Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhakti Prashnopanishad ke Tritiya Prashna ka Vichar Prarambha hua tha. भार्गव ऋषि के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिप्पला जी ने दे दिया। तदनंतर कौशल्य ऋषि आचार्य पिप्पला जी से प्रश्न करते हैं उनकी अनुमति लेकर। उनके द्वारा किए गए जो 6 प्रश्न हैं वही है तृतीय प्रश्नात्मक, यह एक प्रकरण तीसरा। उन अवांतर 6 प्रश्नों में प्रथम प्रश्न है उनका कि पूर्व में प्रजापतित्व अत्रित्वादि अनेक गुण जिस प्राण में बताए गए हैं वह प्राण भी अनादि नहीं है, स्वरूपतः सादि है, उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होगा तो उसका कोई न कोई कारण होगा। तो प्राण भी उत्पत्तिमान होने से किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, वह कौन है प्राण का उत्पादक कारण, किस निमित्त से किस कारण से उत्पन्न होता है प्राण, कुतः एष प्राण जायते, ये प्रथम प्रश्न था। और उत्पन्न होकर के ऐसे ही कहीं खुला नहीं घूमता है, वह 84 लाख प्रकार के शरीरों में स्थित हो जाता है। तो शरीर में प्राण के प्रविष्ट होने में कौन निमित्त है, प्राण का प्रवेश कौन कराता है शरीर में, और प्रविष्ट हुआ प्राण इस शरीर में स्वयं अपने आप को विभक्त करके तथा जिनका जो गोलक है उन गोलकों में चक्षुरादि इंद्रियों को भी स्थापित करके कैसे रहता है, ये तीसरा प्रश्न हुआ। और चौथा प्रश्न हुआ कि वह कैसे उत्क्रमण कर लेता है, इसके उत्क्रमण का निमित्त कौन है इस शरीर से, एक बार शरीर में प्रविष्ट हुआ तो हमेशा उसी शरीर में नहीं रहता, कुछ समय बाद इस शरीर से चला जाता है। तो जैसे आने में कौन निमित्त है ये पूछा, ऐसे इसके इस शरीर से निकलने का निमित्त भी कौन है, ये चौथे प्रश्न से पूछा गया। पांचवें प्रश्न से पूछा गया कि अधिभौतिक तथा अधिदैविक जगत का विधारण यह प्राण कैसे करता है, पूर्व में सर्व विधारकत्व एक गुण प्राण में बताया गया था, तो सर्व कहने से सारा जगत आ गया, तो सारे जगत के 3 विभाग में अलग अलग विभाग बताए हैं, 3 विभाग किए हैं, एक अधिदैव, दूसरा अधिभूत। इन अधिदैव तथा अधिभूत दोनों को मिलकर के कहा जाता है बाह्य, और अध्यात्म जगत को कहा जाता है अध्यात्म। तो यहां पर कथम बाह्यम अभिधत्ते, इससे पूछा पंचम प्रश्न से कि बाह्य शब्दित आधिभौतिक तथा आधिदैविक जगत को विधारण करके प्राण कैसे रहता है और अध्यात्म का भी कैसे विधारण करता है, ये मुख्य प्राण के उत्पत्त्यादि विषयक छह प्रश्न किए गए आचार्य पिपलाद जी के प्रति कौशल्य ऋषि के द्वारा। पहले तो द्वितीय मंत्र में आचार्य पिपलाद जी ने कौशल्य के प्रश्न की प्रशंसा की। स्थूल जगत से मन का निकल करके प्राण को समझना ही पहले कठिन है। बहिर्मुख इंद्रिया हमेशा मन को अपने बाह्य रूपादि विषयों के ओर ही ले जाती है और बाह्य स्थूल जगत का ही चिंतन करने में मन व्यस्त होता है। इसलिए कभी वह अंतर्मुख नहीं होता और अंतर्मुख हुए बिना इस स्थूल शरीर के अभ्यंतर प्राण को समझना भी सहसा कठिन है। लेकिन प्राण के भी कारण विषयक प्रश्न यहां पर कौशल्य कर रहे हैं का अर्थ है अंतर्मुख है। प्राण को तो वे जानते ही हैं लेकिन प्राण के कारण का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो प्राण का कारण तो सूक्ष्म है, प्राण सूक्ष्म होने से उससे भी सूक्ष्म है, कार्य की अपेक्षा कारण को सूक्ष्म माना जाता है। तो प्राण का कारण प्राण से सूक्ष्म होगा और वहां तक दृष्टि पहुंची है, मन प्राण के कारण अभिमुख है कौशल्य ऋषि का। इसलिए कौशल्य ऋषि के इस सूक्ष्म अर्थ विषयक प्रश्न की प्रशंसा की और कहा तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। तो इन छह अवांतर प्रश्नों के उत्तर क्रम से देते हुए प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया तृतीय कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में और ये कहा कि आत्मन एष प्राण जायते। यह जो प्रजापतित्वादि अनेकों गुणों से युक्त समष्टि प्राण है इसकी उत्पत्ति होती है आत्मा से और यहां आत्मा शब्द परामर्शक है, जीवात्मा का नहीं परमात्मा का। मुंडक उपनिषद में जिसे दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष यक्षरा सबाह्यभ्यंतर अजह इत्यादि शब्दों से लक्षित किया है वह परमात्मा यहां पर आत्मा शब्द का अर्थ है और परमात्मा से ही सारे जगत का आश्रय भूत प्राण उत्पन्न होता है। ये कहा गया कि आत्मनः एष प्राणो जायते, प्राण का कारण परमेश्वर है, परमात्मा है, ये बताया गया। और ये कैसे निष्पन्न हुआ है और परमात्मा में स्थित है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतद् आततम्। तो कहते हैं पुरुष की छाया, पुरुष यानी ये शरीर, यहां पुरुष शब्द आत्मा के लिए नहीं, असंगो ही अयम पुरुष, यहां पुरुष शब्द तो परमात्मा के लिए आत्मा के लिए है। लेकिन यथा येसा पुरुषे छाया, इस वाक्य में पुरुष शब्द का अर्थ शरीर लेना, परमात्मा नहीं। तो शरीर की छाया जैसे शरीर रूपी निमित्त के होने पर अभिव्यक्त होती है, और शरीर के रहते हुए ही होती, यानी शरीर की सत्ता से ही सत्तावान है, उसकी अलग सत्ता नहीं है। ये नहीं हो सकता कि छाई जो शरीर है वह न हो और उसकी छाया मात्र दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी छाया आप देख रहे हैं वह छाया ज्ञापन करती है कि छाई की सत्ता है, छाई विद्यमान है। ऐसे आपको प्राण यदि अनुभव में आ रहा है, प्राण दिख रहा है, आंख से नहीं, प्राण अनुभव से दिखेगा। और ये कार्य रूप है, तो जैसे शरीर निमित्तक नैमित्तिकी है, शरीर की छाया, ऐसे प्राण भी नैमित्तिक है और उसका निमित्त है आत्मा शब्दित परमेश्वर। तो छाया तभी तक है, छाया का अस्तित्व शरीर से टिका हुआ है, ऐसे छाया स्थानीय प्राण उस छाया के निमित्तभूत शरीर स्थानीय परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है। छाया जैसे शरीर की सत्ता से सत्तावान है, ऐसे सारे जगत को धारण करके रखने वाला प्राण कोई अपनी सत्ता से ही सारे जगत को अपने सामर्थ्य से ही धारित करके रखा है, ऐसा नहीं। इसलिए केनोपनिषद में कहा गया सव प्राणस्य प्राण। ये पूछा गया कि केन युक्त प्रथम प्राण प्रयति प्रथम युक्त, तो ये प्रथम जो प्राण है यानी प्रधान जो प्राण है, मुख्य प्राण है, ये किससे प्रेरित होकर के अपना ये परिस्पंदात्मक व्यापार करता है? क्या परिस्पंदन रूप व्यापार करने की शक्ति प्राण में स्वतः है? क्योंकि वहां का जो शिष्य है वह शिष्य तो है उत्तम अधिकारी, और वो जानता है कि भूत जड़ होने से जो भी भूतों का कार्य है वह भी भूतों के तरह जड़ ही है। तो प्राण भी अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से बनता है, इसलिए परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया तो सीधे प्राण से परमात्मा से प्राण उत्पन्न नहीं हुआ है, बीच में पहले परमात्मा से तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि तैतरीय श्रुति के अनुसार आकाशादि पांच भूत उत्पन्न हुए सूक्ष्म भूत, और उनके सम्मिलित रजोगुण से प्राण उत्पन्न हुआ है, इसलिए भौतिक है। और आकाशादि भूत जड़ है, और उन जड़ आकाशादि भूतों का परिणाम प्राण भी जड़ है। ये केनोपनिषद में प्रश्न करने वाला शिष्य जानता है, और ये भी जानता है कि जड़ में जो भी प्रवृत्ति होती है वह चेतन की प्रेरणा से ही होती है, और बाह्य जो रथादि रूप जड़ प्रवृत्त होने वाले पदार्थ हैं उनका प्रेरिता जो लौकिक चेतन होता है वह किसी न किसी विकार रूप प्रेरणा से युक्त होता है, सविशेष होता है। उसकी या तो इच्छा रूप प्रेरणा रहेगी या तो वदनादि क्रिया रूप प्रेरणा रहेगी, और उससे प्रेरित होंगे जड़ पदार्थ और उनमें प्रवृत्ति होगी। तो लौकिक प्रेरिय का जो प्रेरक है वह सविशेष है, उसकी प्रेरणा एक विकार विशेष है। ऐसे आध्यात्मिक जो प्राण है कार्यक्रम संघात पूरा, उसका प्रेरक चेतन वह लौकिक प्रेरिता के तरह ही सविशेष है कि निर्विशेष है? यदि वह भी लौकिक प्रेरिता के तरह ही निर्विशेष सविशेष ही होगा तब तो वो भी विकारी होगा, और जो भी विकारी है वह घटादि विकारी होने से जैसे अनित्य है ऐसे अनित्य होगा, और उसे नित्य की जिज्ञासा है। लेकिन निर्धारण नहीं है कि प्राण का प्रेरक, प्राण को जिससे सत्ता स्फूर्ति मिलती है, प्राणन रूप व्यापार करने का सामर्थ्य मिलता है, वह चेतन निर्विशेष है कि सविशेष है, इसका निर्धारण नहीं है। इसलिए पूछता है कि यह प्राण भौतिक होने से जड़ है लेकिन निरंतर परिस्पंदात्मक व्यापार कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो यह क्रिया उसकी हो रही है जिस चेतन की प्रेरणा से, वह चेतन कौन है, उसका कैसा स्वरूप है? तो उसका उत्तर देते हुए केनोपनिषद में कहा गया सऊ प्राणस्य प्राण, तो इसमें स शब्द से चेतन रूप आत्मा को लेना, और वही प्राण का प्राण है, का मतलब प्राण में प्राणन रूप व्यापार का अपने सन्निधि मात्र से प्रेरक है, प्राण का प्रेरक है, प्राण को प्राणन व्यापार करने की शक्ति देने वाला वो कौन है? वो प्राण का भी प्राण है, वो है चेतन आत्मा, वो निर्विकार है, निर्विशेष है। तो निर्विशेष आत्मा से ही प्राण को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, और वह फिर उस चेतन आत्मा से सत्ता स्फूर्ति पाकर के यह अपना परिस्पंदात्मक रूप व्यापार करता है। इसलिए प्राण में जो भी परिस्पंदनादि रूप व्यापार दिख रहा है वह करने की शक्ति प्राण की अपनी स्वतः नहीं है, छाया चलती हुई दिखती है, कहीं हस्तादि शरीर के हिलते हैं तो छाया में भी हस्तादि का हिलना डुलना दिखता है, लेकिन यदि शरीर स्थिर रहे तो कोई चलनादि क्रियाएं छाया में प्रतीत होगी क्या? नहीं होती। का मतलब छाया का चलना फिरना आदि शरीर के अधीन है, शरीर की सत्ता से है। ऐसे ही आत्मा की सत्ता मात्र से यह प्राण परिस्पंदनादि रूप व्यापार करता है। इसलिए कहा कि यथा ऐसा पुरुषे छाया, तो इस कार्यक्रम संघात रूप शरीर निमित्तक छाया जैसी है, शरीर है तो छाया है, शरीर नहीं तो छाया नहीं है, ऐसे ही का मतलब पूर्ण रूप से आश्रित है शरीर के छाया। ऐसे कहते हैं ये तस्मिन एतत् आततम, तो ये तस्मिन इस सप्तम्यंत शब्द से तो लेना प्रकृत परमात्मा को, प्राण को उत्पन्न करने वाला परमात्मा एतस्मिन शब्द से ग्राह्य है। और एतत् शब्द से ग्राह्य है प्राण तत्व। ये जो प्राण तत्व है परिस्पंदन करने वाला, वह परिस्पंदन रूप व्यापार करने वाला प्राण तत्व ये तस्मिन यानी परमात्मनि आततम यानी आश्रितम समर्पितम। जैसे शरीर में छाया समर्पित है, ऐसे ये प्राण तत्व परमात्मा में समर्पित है। परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है, ये यहां पर कहा गया। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए द्वितीय प्रश्न है, कौशल्य ऋषि का आचार्य पिपला जी के प्रति किया हुआ कि कथम आयाति अस्मिन शरीरे, यह उत्पन्न हुआ प्राण इस शरीर में कैसे आता है, शरीर में प्राण के प्रवेश का निमित्त कौन है। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि मनोकृतेन आयाति अस्मिन शरीरे, ये जो शरीर है इस शरीर में प्राण आयाति यानी प्रवेश करता है, प्रविष्ट होता है, लेकिन उसका निमित्त क्या है तो मनोकृतेन, मनोकृतेन में कृत शब्द का अर्थ है कर्म, लेकिन कौन सा कर्म, तो मनोकृत जो कर्म है का मतलब मानस कर्म मात्र नहीं लेना। तो मन शब्द यहां पर मन का जो विकार है संकल्प इच्छा आदि, तो मन के परिणाम रूप संकल्प और इच्छा से प्रेरित होकर के किया गया जो कर्म यानी सकाम कर्म, ये मनोकृत कर्म शब्द का अर्थ है सकाम कर्म। फल की इच्छा से प्रेरित होकर के किया गया जो कर्म उसे कहा जाता है मनोकृत शब्द से, और उसी कर्म का फिर फल भोगने के लिए वह कर्म भोगायतन जो शरीर और भोगोपकरण जो चक्षुरादि इंद्रिया उनके साथ, भोगोपकरण इंद्रियों के साथ प्राण को इस शरीर भोगायतन शरीर में प्रविष्ट कराता है प्राण को। ऐसे समष्टि प्राण भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ और जो समष्टि शरीर है उसमें प्रविष्ट हुआ, वो समष्टि प्राण उपाधि है सूत्रात्मा की, यानी जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, समष्टि बुद्धि समष्टि प्राण उपाधिक तत्व को। और वो कौन है तो पूर्व कल्प में आपके हमारे जैसा ही एक मानव शरीरधारी जीव था, और उसने प्राण की अहंग्रह उपासना की, समष्टि प्राण की, समष्टि प्राण का सायुज्य प्राप्त करने के लिए, हिरण्यगर्भ बनने के लिए। हिरण्यगर्भ याने इस पूरे संसार का अधिपति, तो पूरे संसार का अधिपति बनने के लिए वेदों ने साधना बताई कि उस अधिपति की मैं के रूप में उपासना करो तो अधिपति बन जाओगे, उसका सायुज्य प्राप्त कर लोगे। तो पूर्व कल्प में जो मनुष्य शरीरधारी जीव समष्टि प्राण की अहंग्रह उपासना कर रहा था, उसकी उपासना परिपूर्ण हो गई और पूर्व कल्प का जो अधिपति हिरण्यगर्भ था, सूत्रात्मा था, उसकी 100 वर्ष की आयु भी पूरी हो गई। तो जब सूत्रात्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो महाप्रलय होता है। तो महाप्रलय हुआ, फिर महाप्रलय हुआ तो